قرآن کا شوق اسی وجہ سے ختم ہوا ہے کہ بچپن سے اس چیز کا شعور ہی نہیں دلایا گیا، نہ ہمارے اسکولوں میں، نہ ہماری اور کسی ایکٹیویٹیز میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کتنا ہے، خود ہی آپ اندازہ لگا لیں، ہماری مجلسوں میں قرآن کتنا ہے، ہمارے معاملات میں قرآن کتنا ہے. ہم تو سوچتے ہیں قرآن کا کیا کام ہے ان جگہوں پہ، ہمارے اپنے مزے ہیں، ہمارے فن ہیں، ان کے اندر قرآن کا کیا کام ہے. شروع سے قرآن نہیں ڈالا گیا، تو اب جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی شوق نہیں ہے. قرآن ایک دتیا نوسی سی کتاب لوگوں کو لگتی ہے، سوری ٹو سے دس از اے فیکٹ، یہ فیکٹ ہے، سب یہ سب جانتے ہیں، چاہے منہ سے نہ بولیں. لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں، اگر آپ مثلا کسی پارٹی میں آپ گئے جہاں پہ لوگ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہیں، آپ ذرا وہاں پہ قرآن کی باتیں کر کے تو دیکھیں، بیچ میں کوئی کہنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا بھائی کوئی اور بات کرو نا، اچھا وہ بتاؤ نا فلاں فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا یہ کیا ہے، لغویات ہے. یعنی موضوع کو چینج کر دینا، آپ دیکھنا کہ وہ آپ بات کچھ کر رہے ہوں گے، وہ ایک دم موضوع چینج کر دیں گے. اچھا یہ بتاؤ نا عید پہ کیا پہننا ہے، چھوڑو نا یار ان باتوں کو، اب کیا تم یہ باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو، کوئی لیکچر کسی اور وقت میں دینا. بات کو پھیر دیتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، تو یا کوئی نکال کے کچھ اور دکھانا شروع کر دے گا، دیکھو یہ کلپ کتنا فنی ہے، دیکھو یہ. کوئی کہتا ہے اچھا بس کرو، بہت سن لیا ہم نے، چلو کوئی فن کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے شادیوں پہ لوگ اسی طرح مہندی کے فنکشن رکھتے ہیں، اس میں پہلے تھوڑا کوئی درس رکھ لیں گے، جس وقت وہ درس ہو رہا ہوگا قرآن کی بات اس میں ہو رہی ہوگی، کوئی آیات بتا رہی جائے ہوں گی، تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بالکل یعنی اس کراؤڈ میں کوئی جان ہی نہیں ہے، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ سو رہے ہوتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کب ختم ہوئی ہے. اور جو ہی قرآن بند کر کے ناچ گانا شروع ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے ان کے اندر لائف آ گئی ہے، یہ تو بڑے جوشیلے لوگ ہیں. دیکھیں کہ ٹیسٹ ہمارے کیا ہو گئے. کسی نے مجھے واقعی یہ شیئر کی بات، انہوں نے کہا ہم ایک جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ وہ مہندی تھی، تو پہلے انہوں نے جی کسی درس والی کو بلا دیا وہاں پہ، وہ اپنے درس دے لیا، ہم تو سو رہے تھے، کسی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اب کیا یہ انہوں نے شروع کر دیا سر باقاعدہ. انہوں نے کہا ایک جگہ پہ، تو میں نے خود سنا کہ جو شادی کے وقت میں جو کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہوسٹ ہوتے ہیں، اس نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا، یہ جو تلاوت وغیرہ کرنی تھی پہلے شروع میں، ان کو بلانا تھا ذرا اللہ کا نام بھی تو ہو جاتا، کہ یہ نہ کوئی ہو کے اللہ کا نام نہیں لیا. اس نے کہا لیٹس گیٹ اوور وتھ دس فرسٹ اینڈ دین ویل ہیو دا ریئل فن، چلو اس کو اب نپٹا لیں، اس کے بعد ہم مزہ کریں گے، یعنی اس کو تو سر سے اتارو نا، پھر ہمارا ہلا گلا شروع ہوگا. یہ قرآن کی اہمیت رہ گئی ہے ہماری زندگیوں میں. اور باقاعدہ کہتے ہیں دماغ خراب ہو جائے گا اگر قرآن بڑا، تو یار زیادہ نہیں ہے ایکسٹریمس بچوں کو بناؤ، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ یہ پڑھوا لیا کسی سے، کسی کو بلا کے یہ بچوں کو ناظرہ پڑھوا دیا، یہ بس کافی ہے، اس سے آگے نہ زیادہ جاؤ. یہ ہمارا آج رویہ ہے قرآن کے ساتھ، اور یہ وجہ ہے آج ہمارے زوال کی. آج ہم نے اتنی ساری انٹرٹینمنٹ اس قرآن کی جگہ پر رکھ دی ہے کہ کوئی قرآن کی طرف آنا بھی چاہے تو وہ اس کی مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ وقت ہی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر واقعی دیکھیں آپ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں بھائی، اگر آپ دیکھو غور سے تو آپ کے پاس بھی بہت ٹائم ہے، لیکن وہ لگ کہاں رہا ہے؟ وہ ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے جو کہ آپ کو قرآن سے دور کرنے والی ہیں. اور جب آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے نا، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر کچھ مزہ نہیں آتا اس قرآن میں، پھر بورنگ لگنے لگتا ہے. اور یہ کتنی بڑی ایک انسلٹ کی بات ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو کسی چینل کے اوپر، اور ہم قرآن کو چینج کر دیں اور اس کی جگہ ہم لگا لیں، نہیں 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 یہ نہیں ہے، ہم چینج کر کے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا اور ہم شور مچا رہے ہیں، ایون ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہم قرآن لگا کے شور کر رہے ہیں، बच्चे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बातें चल रही हैं, और जी हमने कुरान बैकग्राउंड में लगाया है, फोन मिला लिए, फोन पे बातें कर रहे हैं, पीछे जी कुरान चल रहा है। यानी ये भी इसके अंदर ही आ गया कि हम शोर कर रहे हैं उस वक्त। आप देखें जिस वक्त बच्चे कभी ये वीडियो गेम अपनी खेल रहे हैं, या आपका कोई फेवरेट ड्रामा लग गया, तो कहते हैं चुप कर जाओ चुप कर जाओ, कोई एक सीन भी मेरा रहना चाहिए, डायलॉग रह गया मेरा, सुनने से रह गया, मिस हो गया, कोई शोर ना करे। अब बच्चों को आप वीडियो गेम खेलते देखें, आप उनके सामने से भी गुजर जाए तो वो ऐसे ऐसे सर करते हैं कि हमारा कोई एक लम्हा भी ऐसा ना हो कि जिसके अंदर हमारा कोई मिस हो जाए, कितने फोकस्ड होते हैं। और आज देखें इवन जो कुरान सुन रहे हैं वो भी फोकस नहीं है, वो भी फोकस नहीं है। आप देखें कि कुरान पढ़ा जा रहा हो, सीखा जा रहा हो, समझा जा रहा हो, हम साथ साथ टेक्स्ट करने में लगे हैं, हम साथ एक और विंडो खोल के उसमें कुछ और सर्च करना शुरू हो गए, हम साथ फोन मिला रहे हैं, किसी से बात करना शुरू हो गए। अब कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जाता रहे, हमें क्या। अच्छा मुझे अपनी और आपकी, आपको अपनी, हम लोगों को अपनी बातों की इतनी वो होती है कि अगर हमारा बच्चा हमारी बात ना सुने ना, और ऐसे दूसरी तरफ कहीं देखने लगे, कहीं और है, और तवज्जो ही नहीं कर रहा हमारी बात की तरफ, या आवाजें निकालना शुरू हो जाए जब हम बोले, तो हमें कितनी इंसल्ट फील होती, कितना गुस्सा आए हमें कि मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये रवैया हमारा कुरान के साथ होता है, और हमें जरा भी एहसास नहीं होता। ये अहमियत दिया हमने कुरान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में सहाबा की जो इल्म की मजालिस होती थी वो ऐसी होती थी कि उनके सरों पर परिंदे आके बैठ जाते थे, यानी ऐसे लगता था स्टैचूज हैं बैठे, इल्म जुल्मी नहीं होती थी। और आज देखें जो कुरान पढ़ रहे हैं अगर वो भी हक नहीं अदा कर रहे तो फिर और कौन करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि हम ये कहते तो हैं कि काफिर ऐसे करते थे, लेकिन अगर आज आप देखें तो आज भी वही चल रहा है। जिंदगी का मकसद सिर्फ मौज मस्ती करना रह गया, और उसके लिए ये किताब से दूर होना जरूरी है। अगर किताब की तरफ आ गए हमारे तो सारे फन खत्म हो जाएंगे, अतः हमारा नहीं है ये काम। असल में ना देख लें ये शैतान ऐसा दिमाग में डालता है, कुरान से बस दूर करना चाहता है, उसकी असल जंग कुरान है, असल जंग है उसकी। इसीलिए ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए, पढ़ने लगो तो औजु बिल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। जब नमाज में आके तुम्हें, जब नमाज में भी इंसान कुरान की तिलावत करता है, जब नमाज में आके तुम्हें वसवसे डालो फिर भी लेफ्ट तरफ तीन बार थूक दो और औजु बिल्लाह पढ़ो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता इंसान किसी तरह भी कुरान की तरफ आए, और हम उसके एजेंडे को पूरा करते हैं। लोग कहते हैं कोई और किताब पढ़ लो लेकिन कुरान नहीं पढ़ना, ये वो मौलवियों का काम है, ये बड़े बड़े उलमा का काम है, ये आपका काम थोड़ी आम लोगों का पढ़ने का। अल्लाह अकबर, हमने तो ऐसे ही बना दिया जैसे यहूद नसारा ने बनाया था अपनी किताबों के, बस हमारे बड़े पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ते, इसको जिंदगी की किताब नहीं बनाया। कुरान आज पुकार रहा है इस उम्मत को, कुरान की चीखें सुनाई देती हैं या नहीं, ये चीख रहा है, फरियाद कर रहा है, इस उम्मत ने इसको पसे पुश्त डाल दिया, इसको पीछे डाल दिया, इसको सिर्फ मरने पे पढ़ा जाता है, दुल्हनों को रुखसत करने वक्त उनके सर के ऊपर करके और फिर उनको रुखसत किया जाता है, या फिर नया घर लेने तो वहां पे कुरान खवानी कराई जाती है, इस काम के लिए ये रह गया, ये हिदायत लेने के लिए आज नहीं रह गया, ये पता नहीं किनका काम होगा। तो ये कुरान बहुत मजलूम है आज, वो कुरान जिसने जिंदगियां बदल दी थी उस वक्त, यही आज भी जिंदगी बदल सकता है अगर हम इसको वो हक दें जैसे उन्होंने दिया था, कि वो सुबह को जंग भी करते थे ना तो रात को कुरान पढ़ते थे, ये उनकी हालत थी सहाबा की। और आज कुरान ना पढ़ने के 100 बहाने हैं। आज हमारा यकीन करें, हमारा ये सेल फोन भी हमें कुरान से ज्यादा महबूब है आज, और हर चीज हमें कुरान से ज्यादा अहम लगती है। कुरान के लिए वो वक्त है जो कि सबसे फालतू रह जाए, जब सब काम हो जाए तो तब इसके लिए वक्त है। अपना अच्छा वक्त इसके लिए निकालना हमें समझ नहीं आता ये कि हाँ इसके लिए भी कोई निकाल सकता है। इसकी जो जगह थी उस जगह पे हमने और चीजों को लाकर रख दिया। अगर आप नोट करें कि हर यानी जो आपका टाइम लम्हा गुजरता है उसमें आप कुरान की भी कोई चीज समझ सकते हैं और कोई और जगह पे भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब चॉइसेस करने लगते हैं लोग तो चॉइस में ज्यादातर कोई और चीज होती है, कुरान नहीं होता। ज्यादा लघ्व में हमारा वक्त लग रहा है। तो जिंदगी उठा के देखें, जब हम कहते हैं ना वक्त नहीं है तो जिंदगी उठा के देखें किधर लग रही है। आप देखेंगे ज्यादा वक्त लघवियात में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, हमारा वक्त ऑक्यूपाई हो गया लघवियात में। और फिर आप देख लें सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो जहन्नुम में चले जाएंगे ना तो कहेंगे قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, काश हम सुन लेते ना। अब वो तो उस वक्त काफिर उनको मना करते थे ना सुनने से, आज हमें कौन मना कर रहा है? हम खुद नहीं सुनना चाहते। कौन है जो हमें मना कर रहा है? कौन है जो हमारे सर पे तलवारें लेके खड़ा हुआ है या हमें और कोई चीजें दिखा रहा है? हम खुद ऑन करते हैं इन चीजों को, हम खुद देखना चाहते हैं उन चीजों को, हम खुद सुनना चाहते हैं, हम खुद पढ़ना चाहते हैं और लघवियात को। तमाशाई तो हमेशा रहे हैं, लोग तो हमेशा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, हमारी क्या प्रायोरिटी है? आज हमें लग रहा है ना बस एक किताब है तो पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। क़यामत के दिन जब ये अल्लाह की अदालत में हमारी शिकायतें लगाएगा यही बातें कहेगा कि अल्लाह इन्होंने ऐसा मेरे साथ सलूक किया, इवन पढ़ने वालों ने हक अदा नहीं किया, इवन जो ये 3 घंटे हम यहाँ बैठते हैं ना इनके अंदर भी हमें ये याद आ रहा होता है कि ओ मैंने प्याज काटना है, मैंने हांडी चढ़ानी है, मैंने वो सफाई करनी है, मैंने ये वो। 3 घंटे मुश्किल हैं कि इंसान उनमें फोकस्ड होके बैठ जाए। उन्हीं 3 घंटों में मुझे दुनिया जहान के सारे काम याद आते हैं और हम साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ सुन रहे हैं। ये तो हमारे माशाल्लाह हक अदा हो रहे हैं कुरान के। बाकी मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं अपने ड्रामे के दौरान नहीं ये करती कि मैं कोई और भी काम कर लूं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के दौरान, अपने और कामों के दरमियान जो मेरी एक्टिविटीज हैं उनके दौरान तो मैं नहीं ऐसे होती। मैं कुरान के वक्त में ही मुझे और 10,000 एक्टिविटीज हैं जो करनी है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि मेरे नजदीक कुरान की वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए। सच बात है ये, ना इसका पढ़ना, ना इसका सीखना, ना इसका समझना, इवन कुरान के स्टूडेंट्स को इसकी कदर नहीं है कि हमें मिली क्या चीज हुई है। जिस दिन हमें कदर आ गई ना उस दिन हमें इन 3 घंटों का इंतजार होगा और इस 3 घंटे के अंदर हम सिर्फ कुरान को तवज्जो देंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज तो मेरे ये काम है वो काम है मेरे फलाना, ये नहीं कि आज मैं जब उसको टेक्स्ट करना है, उस पार्टी पे जाना है, ये क्या पकाना है, ये क्या करना है, आज की मेरी प्लानिंग क्या है, जल्दी जल्दी खत्म हो ये, फिर ये नहीं कहेंगे। फिर ये वक्त हमें कम लगेगा। जुल्म है जो इस उम्मत ने किया इस कुरान के साथ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन सूरह फुरकान में आता है खड़े होके ये कहेंगे अल्लाह की अदालत में कि अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। तब क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे? आज इसी कुरान के अल्फाज हैं जो बड़े मुश्किल लगते हैं जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने इसको आसान कर दिया, लेकिन इसके ऊपर वक्त लगाना क्योंकि मुझे जाया लगता है। वो ही मुझे कोई कह दे कि आप ये कोर्स कर लेना आपको 1,000 की नौकरी मिल जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, तो मैं देखना मेरे कितना भी कमजोर दिमाग हो तो कैसे मैं नहीं लगाती, कैसे नहीं लगाती, मुझे चाहे दिन रात ना पढ़ना पड़ जाए, सब चीज छोड़ के ना करना, मुझे पता है कि इसकी नौकरी मिली, लेकिन कुरान की कौन नौकरियां देगा? उनकी तो नौकरी जो करते हैं ना उनको भी बरामदों में बाहर बिठाया जाता है। जो आपके बच्चे को कुरान पढ़ाने आता है उसकी ये अहमियत होती है कि उसको बाहर बिठाया जाता है, और जो इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने आता है उसको एसी के कमरे में बिठाया जाता है। जब लोग ये देखेंगे तो फिर वो यही कहेंगे कि इससे क्या हमें फायदा मिलना, क्योंकि हमारे लिए तो सब चीज दुनिया है ना। दीज आर फैक्ट्स, चाहे कड़वे लगे लेकिन यही हकीकत है। हमने बुरा किया है, हम क्या अल्लाह ताला को जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि मैंने क्यों नहीं इस कुरान को सीखा, मैंने क्यों नहीं वक्त दिया, मैंने क्यों नहीं हक अदा किया। अगर एनरोल हो ही गई थी मैं, अगर मैंने रजिस्टर करा ही लिया था और मैं चली पड़ी थी, तो मैंने इसका कितना हक अदा किया, ये बताइए।